आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री क्षमा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री भव्य सागर जी महाराज की।
तो उपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। दृष्टि की निर्मलता और आत्मज्ञान पूर्वक जब हम समीचीन आचरण अंगीकार करते हैं, तब फिर धीरे धीरे हमारा जीवन अच्छा बनना शुरू होता है। दृष्टि की निर्मलता सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा से हमने हासिल कर ली है, और दृष्टि की निर्मलता होते ही हमें अपने आत्मकल्याण की बुद्धि समझ अपने भीतर आ गई है। इतना होने पर अब हमें सहज भाव से अपने आचरण को परिवर्तित करने के लिए अपना पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए और किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने बाह्य में चारित्र अंगीकार करने के लिए इतनी ही बात कही है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो और अपने आत्मकल्याण की भावना हो, तब हम जो भी आचरण अंगीकार करते हैं वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनता है। चरणानि योग की पद्धति से तो आचरण जो बाह्य में अंगीकार किया जाता है उसके लिए इतनी अनिवार्यता है कि हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा हो और हमें अपने आत्मकल्याण की रुचि हो, संसार के प्रति हमारी उदासीनता हो। इतना यदि हम कर पाते हैं तो फिर हमें बिना किसी संकोच के और अपने जीवन में व्रत नियम इत्यादि अंगीकार करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रवृत्ति से हम बच नहीं सकते, सुबह से शाम तक मन वचन काय की कोई ना कोई प्रवृत्ति चलती रहती है, और प्रवृत्ति दो ही प्रकार की होती है, शुभ प्रवृत्ति होती है और अशुभ प्रवृत्ति। अशुभ प्रवृत्ति तो सर्वथा हे है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए और शुभ प्रवृत्ति करना चाहिए। लेकिन शुभ प्रवृत्ति में ही धर्म न मान ले हम ये ध्यान रखें कि वास्तव में तो धर्म निवृत्ति मार्ग में है। सो ऐसी प्रवृत्ति करें जो हमें निवृत्ति की तरफ ले जाए, अर्थात हम सामान्यतः पाप से तो निवृत्त हो गए हैं, लेकिन हम जब आत्मस्थ होंगे तब जाकर के वो वास्तविक निवृत्ति हमारे जीवन में घटित होगी। इसलिए जब भी हम शुभ प्रवृत्ति करें, हमारा लक्ष्य जो है और पूर्णतः मन वचन काय की एकाग्रता या आत्मलीनता का होना चाहिए, क्योंकि आत्मलीनता का नाम ही चारित्र है। अपने आप में रुचि होना, अपने आप का ज्ञान होना और अपने में ही लीनता होना, वास्तव में तो यही निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो बाह्य में सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, शास्त्र का अभ्यास है, और बाह्य में व्रत नियम इत्यादि अंगीकार करने रूप जो बाह्य मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वो इस निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में साधन है। हम तो भैया साध्य की प्राप्ति के लिए साधन ही अंगीकार कर सकते हैं। साध्य हमारी दृष्टि में रह सकता है, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हुई तब तक हम साधन को छोड़ नहीं सकते। इसलिए हमने तो बाह्य में सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, आत्म तत्व के आपने कल्याण की जो समझ है, जिसको अपन कहें कि तत्व का अभ्यास, और साथ में व्रत नियम इत्यादि बाह्य आचरण, ये हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनते हैं। ये दो तरह से प्ररूपित किए गए, आंशिक और पूर्ण रूप से। आंशिक रूप से इन व्रतों का पालन एक सदगृहस्थ करता है और पूर्ण रूप से मुनि महाराज करते हैं। अभी हम वास्तव में तो हमें वही व्रत नियम जो कि निवृत्ति की मार्ग की तरफ ले जाते हैं। पूर्ण निवृत्ति जिनके लेने पर प्राप्त होती है, वैसे तो प्रारंभ में हमें उसे ही धारण करना चाहिए, लेकिन जब महाव्रतों को धारण करने की शक्ति ना हो तब फिर अनुव्रतों को तो अवश्य शावक को धारण करना चाहिए। ऐसा उल्लेख एक सदगृहस्थ के लिए भी बाह्य में व्रत नियम इत्यादि धारण करने का आचार्य भगवंतों ने लिखा है। सो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम ये विचार करके कि वास्तव में तो मुझे मेरी अपनी सामर्थ्य को नहीं छिपाते हुए और अंगीकार तो मुझे महाव्रत करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरी सामर्थ्य नहीं होने से कम अनुव्रतों का पालन तो करता हूं। लेकिन अनुव्रतों का पालन करने से पहले हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आंशिक रूप से छोड़ने से पहले एक सदगृहस्थ का कर्तव्य क्या है, इसका भी हमें विचार कर लेना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने एक सदगृहस्थ के लिए 5 बातें कही हैं, उसके बाद फिर कहेंगे वो कि हाँ, अब हिंसा आदि पापों का त्याग करने की सामर्थ्य आपके भीतर आ गई। आज वे 5 बातें बहुत अनिवार्य हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। एक सदगृहस्थ का, जिसकी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है, अहिंसा धर्म में श्रद्धा है, जिसको अपने आत्म कल्याण की, अपने जीवन को अच्छे बनाने की रुचि है, उसके लिए तो ये 5 बातें जरूर अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले लिखा कि पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना, ये पहला कर्तव्य। अब पूर्वजों की कीर्ति किस बात में रही, इसका विचार कर लें, और क्या हम उन पूर्वजों की कीर्ति को आज वर्तमान में बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या ज्यों की त्यों बनाए रखे हुए। पूर्वजों की कीर्ति तो इस बात में थी कि हमारे पूर्वज व्यसन से मुक्त थे। व्यसन से मुक्त होना हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कारों में व्यसन मुक्तता रही। आज वर्तमान में क्या हम इस कीर्ति को, अपनी इस प्रशंसा को बनाए रखे हैं? सब जानते हैं कि मांसाहार करना, शराब पीना और अन्य भी जो चोरी, जुआ, ये सब बुरी आदतें हैं। व्यसन का मतलब बुरी आदतें। इन बुरी आदतों को हम छोड़ेंगे तभी जाकर हम अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा कर पाएंगे। तामसिक और राजसिक जीवन पद्धति नहीं रही पूर्वजों की, सात्विक जीवन पद्धति रही। हिंसा, झूठ, चोरी में किसी ने धर्म नहीं माना पूर्वजों ने, हमेशा अहिंसा और सत्य में ही धर्म माना, यही हमारी अहिंसक प्रवृत्ति रही। इतना ही नहीं, सब जीवों का उपकार करने की भावना यानी परोपकार की प्रवृत्ति ये पूर्वजों की रही। क्या हम उनकी रक्षा आज कर पा रहे हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके मायने हैं अभी हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की सिर्फ प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं, बाकी हम उसको अपने जीवन में और ला नहीं पाएंगे। जब हम इतनी सी बात ही नहीं कर पाएंगे तो अपने जीवन को अच्छा बनाने का जो बाह्य चारित्र जो आचार्य भगवंतों ने लिखा है अनुव्रत और महाव्रत के रूप में, वो हम कहाँ से अंगीकार कर पाएंगे? जब हमारे अंदर अभी शावक का पहला कर्तव्य भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमें करना चाहिए। किस बात में हमारी शान थी, किस बात के लिए हम प्रसिद्ध थे, किस बात में हमारी प्रशंसा थी, इन चीजों में हमारी प्रसन्नता थी। हम अपनी जो विवाह पद्धति है वो आर्स पद्धति से विवाह करते थे, आचार विचार समान हो और जिसमें बाह्य वैभव की प्रमुखता ना हो, गुणवत्ता की प्रमुखता हो, ऐसी आर्ष पद्धति से हम अपने संसार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रवृत्त होते थे। ये सब हमारी परंपराएं जो पूर्वजों के द्वारा हमें दी गई थी, जिनमें हमारी प्रशंसा थी, जिनमें हमारी कीर्ति थी, हमें उनकी रक्षा के लिए उपाय करना चाहिए। वर्तमान में सारी चीजें, पहला ही दायित्व अभी ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। ईमानदारी से अपने घर जाकर किसी घर के अकेले कोने में बैठ के अपनी छाती पे हाथ रख के फिर बाद में अपने आप से पूछना ईमानदारी से, बाकी चर्चा प्रवृत्ति निवृत्ति की बाद में हमारे पास छोड़ देना, हमारे जिम्मे छोड़ देना, सोहोपयोग शुद्धोपयोग की चर्चा छोड़ देना अभी आप, ये कह रहा हूं आपसे। अभी पहले ये इतना सा काम कर लो आपकी, वास्तव में हमने अपनी जो जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, रत्नत्रय की परंपरा जहां चल करके आ रही है, जहां व्यसन मुक्त और सात्विक जीवन पद्धति है, जहां हम विवाह इत्यादि भी करते हैं तो आचार विचार और गुणवत्ता देख के करते हैं, बाह्य वैभव इत्यादि देख कर नहीं करते, पैसे की अपेक्षा से नहीं करते हैं, हम गुणवत्ता को ध्यान में रखते, आने वाली परंपरा धार्मिक प्रवृत्ति वाली होगी कि नहीं, ऐसा हम इस पद्धति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं, हम व्यसन में तो नहीं पड़ गए हैं। तो आज देखने में तो यही आता है कि हम एक तरफ व्यसनों में भी लिप्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ पर के उपकार की प्रवृत्ति हमारी जाती रही है, और तीसरी तरफ जो हमारी आगे परंपरा चलने के लिए विवाह की आर्ष पद्धति थी, अब आर्ष पद्धति न रह करके गंधर्व विवाह या कि राक्षस विवाह की पद्धति आ गई है। चाहे जिसके साथ संबंध स्थापित कर लेना उसकी मर्जी के बिना, ये राक्षस विवाह है, और लव अफेयर्स जो चल पड़ा है आज के समय में वो सर्व गंधर्व विवाह कहलाता है, ये आर्ष पद्धति नहीं है। हमें इस पर विचार करना चाहिए, बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए कि हमने अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा भी कर पाई है या कि नहीं कर पाई है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम अपने जीवन को अच्छा कैसे बना पाए। इस पर ज्यादा विचार न करके, सब इस चीज से जानते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ आपसे। धर्म सभा में व्यसन से मुक्त होने की बात करना, इससे ज्यादा शर्म की चीज और क्या हो सकती है। माथा झुक जाना चाहिए, धर्म सभा में हमें ये कहना पड़े कि हमारा धर्म ये है, हमारा कुल का आचरण ये है कि हम पानी शान के पीने वाले लोग हैं, हम रात में भोजन का त्याग करने वाले लोग हैं, हम अपने भगवान के दिन भर में एक बार दर्शन करने वाले लोग हैं। हमारी कीर्ति तो इसमें थी, हम अपनी उस कीर्ति की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर क्या है हमारे पास, शेष क्या रहा। थोड़ा सा ज्ञान, वो भी किताबी ज्ञान, थोड़े से धन संपत्ति, वो भी पुण्य के उदय से थोड़ी बहुत मिल गई, जिस दिन झटका लगेगा पाप का उस दिन जो है कोई नहीं देखने वाला, कोई हमारी पूंछ रीझ बूझ नहीं करने वाला। फिर हमारे हाथ में रहेगा क्या, हमारे हाथ में रहेगा हमारा अपना जो धर्म है वो हमारा हाथ में है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो आचरण की पवित्रता है वो हमारे हाथ में रहेगी, उसमें हमारी कीर्ति। हम कहीं भी चले जाएं, फटे कपड़े भी पहने हो, लेकिन चारित्रवान व्यक्ति होवे तो उन फटे कपड़ों के भीतर से भी उसका तेज बाहर टपकता है। इसलिए हमें पहले नंबर अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। फिर उसके बाद कहते कि जिनेंद्र भगवान की पूजा करने का नियम ये हर श्रावक का सहज ही होना चाहिए, इसमें किसी से नियम दिलाने या लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। बताइए, आज हमें देने और लेने की दिलाने की आवश्यकता पड़ गई, जबकि ये सहज परंपरा से प्राप्त, विरासत में प्राप्त हुई चीज है कि देव पूजा करेंगे, जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन करके अपने चित्त को निर्मल बनाने की प्रक्रिया। क्योंकि श्रावक तो सुबह से शाम तक अशुभ प्रवृत्ति भी करता है, खोटे कामों में भी प्रवृत्त हो सकता है, क्या करे, धन पैसा कमाने के लिए उसे बहुत सारे उपाय करना पड़ते हैं, उनमें अनजाने भी और नहीं चाहते हुए भी उससे बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो उसके जीवन को मलिन करती हैं। उन मलिनताओं से बचने के लिए वो जिनेंद्र भगवान के सामने अपने चित्त की निर्मलता का रोज उपाय करे। ऐसा देव पूजा का सहज कार्य आज तो जो है वो कहना पड़ता है कि भैया पूजा का नियम ले लो, या कि हवलाएं लेते हैं, ऐसे जैसे कि थोड़ी हम पे कृपा कर रहे हों कि हवलाएं लेते, एक दिन को लाए लेते, हफ्ता में कर ले हैं, अब आप कह रहे हो आए हो 1000 किलोमीटर से आए हो, हम लाए लेते कोई बात नहीं है, और 4 महीना हो ले ली, जब तक आप रहोगे तब तक हो लाए लेती, मतलब ऐसा कि जैसे बहुत मजबूरी हो, नहीं ये तो हमारा अपना कर्तव्य था, किसी के कहने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी। भगवान के गुणगान करने के लिए भी किसी एक छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि तुम दिन भर में अपनी माँ को याद करते हो, वो कहता भूलते ही कहा हूं जो कि अलग से याद करूं। पूछो उस छोटे से बच्चे से कि तुम अपनी माँ को याद करते हो तो वो कहेगा मैं भूलते ही नहीं हूं, याद व्याद करने की अलग से कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही हमारे मन में जो है अपने जो आदर्श हैं पंच परमेश की, उनके प्रति पूजा का भाव निरंतर बना रहना चाहिए। वास्तव में तो ये बहुत सहज सी प्रक्रिया है। साथ धीरे धीरे ये भी कर्तव्य हमारे जीवन से छूटता चला जा रहा है। देव पूजा सबके यहाँ पर परंपरा से चलनी चाहिए और सहज रूप से उससे हमें लाभ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेले पूजा की क्रिया कर लो आप, इस पे अपन विचार करेंगे। अकेले पूजा की क्रिया करना नहीं, उसके साथ परिणामों में निर्मलता भी आनी चाहिए। अभी पूजा की प्रक्रिया में भी इतनी सारी बातें हैं कि कोई बताने बैठूं तो बड़ा मुझे तो संकोच लगता है कि क्या करना। जैसा चल रहा, 16 है तो, गैर 16 है तो, वहीं पर जो है पैंट शर्ट वाला उसी में से द्रव बना रहा, उसी में से पंचा पहने मंदिर के तो उसी में से वो छूरा, उसी में से वो कर रहा। कल के दिन जो है सारी परंपरा धीरे धीरे करके, वैसे ही तो कमती रह गई, वो धीरे धीरे और हो जाएगी खत्म। अपने हाथ से करते अपन, थोड़ी सी आलस, थोड़ा सा प्रमाद, अज्ञानता तो अपनी जगह है सो है ही, मनो साथ में जो है अपनी आलसी प्रवृत्ति, पुरुषार्थहीनता जिसको कहें, वो भी इसमें कारण बनती है। भैया इतना तो ध्यान रखो कि अपने कल्याण के साथ साथ ये मार्ग आगे चलाने की भी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप के जाएंगे हम, वो हमारी प्रशंसा किस बात के लिए करेंगे? इस बात के लिए कि हमारे पिताजी रात में खाते थे, इस बात में उनकी प्रशंसा है। हमारे पिताजी कहूं मंदिर नहीं गए, इस बात में उनकी प्रशंसा है। जय पूर्वजों की कीर्ति जाए, देख जी गाएंगे हमारी कीर्ति, जो हम आज अपने पूर्वजों की कीर्ति ये गाते हैं कि हमारे पिताजी ने तो बिना भगवान के दर्शन के मुंह में पानी नहीं डाला। हम जे कीर्ति गाते हैं वो ये गाएंगे कि हमारे पिताजी ने बिना पेपर हाथ में लाए और बिना टेलीविजन देखे मुंह में पानी नहीं डाला। ये कीर्ति है हमारी, नहीं विचार करना आप, हम हंसने के लिए नहीं कह रहे आपसे, हंसे तो आप बहुत हो अपने ऊपर, नहीं दूसरे के ऊपर, अपने ऊपर तो रोना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ये तो दुख की स्थिति है, इसमें तो सिर जो है वो शर्म से नीचे झुक जाना चाहिए कि सचमुच क्या कर रहे, क्या कर, इतने विवेकवान और इतने ज्ञानवान होकर के भी, और हम इन चीजों को सुनते हुए जानते हुए भी और उन्हीं चीजों में लगे और उसी में अपना स्टेटस मान रहे, उसी में अपनी शाबाशी मान रहे। सबसे ज्यादा ज्यादा दुर्भाग्य अगर कोई है तो ये कि जब हम गलत करते हैं और उसमें अपनी प्रशंसा मानते हैं और उसमें शाबाशी मानते हैं और ये मानते हैं कि हाँ हम सही हैं, तब तो और ज्यादा दुखद है। विचार करना चाहिए कि सुबह से हमारे पास अत्यंत व्यस्ततम जीवन में से भी आधे घंटे जिनेंद्र भगवान की पूजा का तो होना ही चाहिए। देव पूजा क्योंकि हमारे लिए तो सहजकारी है, वो तो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। जिनेंद्र भगवान की पूजा का भाव हमारे भीतर और जैसी उसकी प्रक्रिया है उसके अनुसार करेंगे, यदवा तद्वा नहीं करेंगे। सिर्फ दोहराना नहीं है, चित्त निर्मल हो इसके लिए करना। और फिर तीसरे नंबर लिखा अतिथि सत्कार। ये हमारे गृहस्थ जीवन का सहज दायित्व है, कर्तव्य है कि जो भी अतिथि होगा उसका सत्कार करेंगे। अतिथि और अभ्यागत दो होते हैं। अतिथि वो है जो कि संयम पूर्वक अपना जीवन जीता है और जिसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, वो अतिथि है। यानी जो महाव्रती आचार्य उपाध्याय और साधुजन है वे हैं वास्तव में अतिथि, और बाकी हमारे यहाँ पर जो अपनी सूचना दे करके आते हैं, जिनके जाने की भी सूचना तय रहती है, वे सब अभ्यागत कहलाते हैं। ऐसे अतिथि और अभ्यागत, इन दोनों के सत्कार की जहां पर परंपरा है, अतिथि देवो भव, ये भारतीय संस्कृति रही, ये हमारे लिए विरासत में मिली हुई चीज है। आज तो जो है अपने घर के घर में ही रिश्तेदार आ जावे तो ऐसा लगता कि अब कभी चले जाते, ऐसा लगने लगता। ये क्या चीज है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि अपनी इंद्री लोलुपता इतनी बढ़ गई, इतनी सुख सुविधा भोगी प्रवृत्ति बढ़ गई कि दूसरे के आने से उसमें बाधा पड़ती है और कुछ नहीं। वो पहले के लोग जो है वो चार बातें अपने जीवन में कमती हुई है सुख सुविधा की तो रह जावे, लेकिन कोई भी आएगा तो उसका ऐसा सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। अपन तो ये सोच के कि कमती करो ना, बीर भी रहा है। बेटी को भी जो है बुलाने में एक बार पिता को सोचना पड़ रहा है, भाई को रक्षाबंधन पर बहन को बुलाने में एक बार सोचना पड़ता है कि बुलाएं कि नहीं, बजट गड़बड़ा जाएगा। क्या इससे जीवन चलता है? क्या पैसे से ही जीवन कर चलता है कि भावनाओं से जीवन चलता? भैया हमारे ख्याल से तो आज तक किसी का पैसे से चला हो तो भैया बहुत पैसे वाले तो बहुत हैं, नहीं चलता भावनाओं से। और वे भावनाएं धीरे धीरे हमारी जो है वो समाप्त होती चली जा रही। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे यहां पर आया हुआ अतिथि हमारे द्वार पर वो खाली हाथ लौट करके नहीं जावे, उसका सम्मान हमारा कर्तव्य है। एक व्यक्ति जो है विश्वनाथ नाम था नरेंद्र के पिता का, जो कि विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र, उनके पिता का नाम विश्वनाथ था। उनके दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर के और भोजन मांगने लगा। पिता ने उठ करके उसको भोजन दिया, करवाया वहीं बैठकर, उसके बाद चला गया वो। लेकिन रोज का क्रम हो गया, उस समय पे आने लगा। पिताजी भी जो है बिना कुछ कहे, ऐसा 8 दिन हुआ। एक दिन 11-12 वर्ष के नरेंद्र ने, और जब वो पिताजी चौके में से भोजन सामग्री ले जाके बाहर देने लगे, तो बीच में रोक लिया कि ये धर्मशाला नहीं है, कि चाहे जिसको और आप जो है भोजन कराते रहो। 8 दिन से जानते हैं आप वो कौन है, मैंने पता कर लिया है, ठीक आदमी नहीं है वो, तो व्यसन करता है, ऐसा कहा। विश्वनाथ कुछ नहीं बोले, उनकी आंख में आंसू आ गए। तो नरेंद्र को थोड़ा दुख पहुंचा के इतनी सी बात तो मैंने कही और पिता की आंख में आंसू आ गए। तो पूछा उनसे कि मैंने आपके लिए कोई कड़ी बात तो कही नहीं? बोले नहीं, तुमने कोई कड़ी बात नहीं कही, लेकिन तुमने जो बात कही है वो इस घर की परंपरा के विरुद्ध कही है। हमारे यहां तो घर के दरवाजे पर कोई भी आएगा वो भूखा नहीं जाएगा, उसका सम्मान होगा, उसे दुत्कारा नहीं जाएगा। ये तो हमारी घर की परंपरा है। वो कैसा है कैसा नहीं है ये वो जाने, मैं कैसा हूं ये मैं जानता हूं, और मुझे वो ही जानना पर्याप्त है। जब तुम इस घर के मालिक बनो तब तुम्हें जो करना हो वो करना, अभी तो घर का मालिक मैं हूं, और मेरा मन है कि उसे 2 रोटी खिलाने में कोई हर्जा नहीं है। सो जाकर उसे भोजन करवा देते हैं, बात आई गई हो जाती है। 8 दिन के बाद देखते हैं नरेंद्र कि वही आदमी जो बाहर बैठा हुआ रहता था, जिसको पिता बाहर से भोजन कराते थे, आज तो बैठक में बैठा है पिता के पैरों के पास। तो दरवाजे के पीछे छिप करके सुना कि देखें क्या कह रहा है। तो वो क्या कह रहा था कि इस पूरे गांव में सबने मुझे धुतकार के भगा दिया, मैं खोटा आदमी हूं, मेरा आचरण खराब है, ये मैं जानता हूं, लेकिन सबके धुतकार देने से मेरा मन भी बहुत व्यथित था, उस व्यथा में मैं और खोटे काम करता था। सिर्फ एक आप हैं जिनने कि आज 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मुझे कभी नहीं धुतकारा, भोजन करवाया, मैं अब आपके चरणों में हूं, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, मैं तो बन गया था पशु, आप मुझे आदमी बना लेवे तो मैं वैसा ही सब करने के लिए तैयार, मैं सारी बुरी आदतें आपके चरणों में छोड़ना चाहता। बताइए, अतिथि सत्कार से हमारा ही नहीं दूसरे के जीवन का भी परिवर्तन होता है, इसलिए ये संस्कृति रही हमारी कि हम अपने अतिथि सत्कार क्या है, 2 शब्द प्रेम के हैं भैया। बिस्लरी में से पानी पीना भी प्यास बुझाने में कारण बनता है, और अपनी चुल्लू में से दूसरे के द्वारा हम लोटा मांझ के और प्रेम से कि हाँ पी लो आप बहुत ठंडा पानी है, और 2 बातें भी करते जा रहे हैं और पानी भी पिलाते जा रहे हैं, वो हमारी परंपरा रही। बिस्लरी में से पानी पी लेने की परंपरा हमारी नहीं रही, विदेश की रही। इतना फर्क था, वहां भावनाओं का फर्क। आप क्या दूसरे को की प्यास बुझाएंगे, प्यास अकेले पानी से नहीं बुझती, प्रेम के 2 शब्द। आप किसी को अपने भोजनों को घर पे बुलाओ और फिर बाद में भोजन कर लगे सो कहो के खा लो अच्छे से, जिंदगी में देखो ने हुई है सो, ऐसा कहो आप उससे, वो क्या करेगा, उसके पीछे जो है क्या भावना छिपी हुई है, उसके पीछे तो सत्कार की भावना छिपी है। 4 पैसे से सत्कार नहीं होता, सत्कार तो भावना से होता है, वो अपने को बनानी चाहिए। उस भावना के बनाने से हमारा जीवन भी ऊंचा उठता है और दूसरे का परोपकार भी होता। इसलिए ऐसी प्रक्रिया लिखी कि एक सदग्रस्त अतिथि सत्कार के लिए हमेशा तैयार रहे, इतना भोजन घर में हो कि साधु भूखा ना जाए, ऐसा लिखते उसमें। वो सबको मालूम सबको है, जाना सब है, वो तो हम हम तो मैंने ये आदत दिलवा दी थी भैया के साथ, कौनू को कौनू बात भीतरे तक लग जावे एक आध को लगे जावी हमें मालूम, कछु ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम, एक आध को लग जाएगी भीतर सो बदल जाएगा, बाकी तो अपन सब जो है वो एक कबूतर था तो वो पहले बैठो वो की दुकान पे सुनार की, सो उसने ठक की आवाज करी सो उड़ गया वो कि कछु गड़बड़ हो रही, फिर दूसरी बार आके बैठा सो फिर ठक की आवाज हुई, उसने कहा कुछ होता तो है नहीं, आवाज भर होती है, सो फिर तो वो कबूतर उतना ही बैठो रहे तो लोहा वो सुनार अपनो काम ठक 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 करता रहता था, वो कछु फर्क नहीं पड़ता था। ये नहीं करना भैया कि कहने वाला जो है ठक ठक करता रहे और हम जो है वो तो हमें सब मालूम है, हम तो सुनी हमने सब, कहो महाराज भूल जाए हमें तो भी याद है, इससे काम नहीं चलेगा काम इससे कि जो मालूम है उसमें से कितना हम कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर क्या कर सकते, तब बदलेगा जीवन हमारा। और फिर कहते हैं कि बंधु बांधवों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये हमारी सदगृहस्थ की चौथे नंबर की कहना चाहिए दायित्व कर्तव्य है। आज इस चीज को भी हम देख लें, अपने बंधु बांधवों की मदद करने का भाव कितना है आज हमारे यहाँ पर, बहुत मुश्किल से बहुत थोड़े से लोग मिलेंगे जो अपने बंधु बांधवों की मदद करेंगे। आज वर्तमान में आप अगर चाहो कि फलानी जगह और एक वेदी बनने हैं सो अब वहीं जो है खड़े हो जाएंगे चार जने, क्या हमारी तरफ से बना दो, श्री जी लाना है सो स्थापना करवा दो, मनो के नीचे हमारा नाम लिखवा दी, इसके लिए आज तैयार हो जाएंगे। लेकिन कोई जो है, और अगर हमारे ही धर्म की परंपरा में सच्चे देवगुरु शास्त्र और अहिंसक परंपरा में कोई व्यक्ति जो है और धन पैसे के अभाव में और अपना जीवन ठीक से नहीं जी पा रहा, मुझे सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है, मैं ही जानता हूं मेरा कष्ट, जब कोई बच्चा ये कहता कि हमारे पैसे ना होने से हमारी पढ़ाई रुक गई, तब उस समय अत्यंत कष्ट लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे कितने बच्चे हैं आज हमारे हमारे यहां पर हमारे अपने परंपरा में जिनकी पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते, वे योग होने के बाद भी नहीं पढ़ पाते हैं कि उनके पास पर्याप्त पढ़ने के लिए धन पैसा नहीं है। लेकिन अपने ही बंधु बांधवों की, हमारे यहां पर हो सकता है कि हम अपने बच्चे को जो है और मियो में और बड़े कॉलेज में और उसमें भर्ती करवाएं, लेकिन हमारे बाजू में अगर कोई है उसके लिए हमारे पास नहीं, हमारे पास और चीजों में खर्च करने के लिए बहुत है जिनमें कि कोई औचित्य नहीं है, उनमें हम लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें बंधु बांधव, हमारे बंधु और बांधव हैं ये सब, ये ध्यान रखना, जो अहिंसक पद्धति से जीवन जीत रहा है वे सब हमारे बंधु बांधव, जो वीतरागता में और अहिंसा में विश्वास रखता है वे सब हमारे बंधु बांधव, जो सदाचरण के मार्ग पर चल रहे हैं जिनकी श्रद्धा आत्मज्ञान और अच्छा आचरण है वे सब बंधु बांधव, उनकी हमें क्या मदद कर पाते हैं अपन, उसकी भावना सहज होनी चाहिए, हमारे कैसे नहीं भैया, हमारे कैसे नहीं करियो कछु, तुम तो भीतर भावना पैदा करो, सो हमें फिर केवी की जरूरत ही नहीं पड़े, न किसी को आपखों केवी की कि हमने जो करो, असल में भीतर भावना नहीं होती है, सो अपन कछु भी करते हैं तो चार दिन उसमें केवी की इच्छा होती कि हमने जो करो, और जब हमारे अंतरंग में भावना हो तो फिर किसी से कहने भी नहीं जाते कि करो हमने, फिर तो हम करते रहते और आनंद लेते रहते, फिर बताने का आनंद नहीं रहता, फिर तो करने का आनंद रहता, अभी तो यह है कि करने का उतना आनंद नहीं जितना बताने का आनंद रहता कि हमने जो करो। हमारे जीवन में सहज रूप से आने वाली चीजें होनी चाहिए, हमें अपना कर्तव्य मान करके, और आखिरी चीज लिखी हुई है कि अपने आत्मोन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, ये पांच दायित्व है एक सदगृहस्थ के लिए, पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना, भगवान की पूजन करना, अतिथि का सम्मान करना, बंधु बांधवों की निरंतर मदद करने के लिए तत्पर रहना और अपनी आत्मोन्नति के लिए हमेशा तैयार रहना कि मैं कैसे अपने आत्मा का विकास करूं, कैसे मैं अपने जीवन को सार्थक बनाऊं, जो कि मैंने मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त किया, उसकी सार्थकता इसमें है कि मैं अपने जीवन को निर्मल बनाऊं, पवित्र बनाऊं। क्या इस तरह के भाव अपने भीतर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भैया। ये सारी चीजें अपने भीतर आवें तो ही अपना जीवन सार्थक होगा। साधु के जीवन में संतोष और साधु के जीवन में समता, यही है आत्मोन्नति की लोक पाए, और कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। तो कहने लगे कि भाई तुम्हारे साथ एक दो दिन रहो, बताएंगे। रह गया वो उनके साथ। एक दिन बाबा जी ने कहा कि चलो आओ अपन घूम कर आते हैं गांव में। सो गांव में ले गए, एक व्यक्ति के घर के सामने पहुंचे बाबा जी और कहा कि ये इसलिए आया है कि इसको ये नहीं तय कर पा रहा कि अच्छे गृहस्थ बन जावें या कि बाबा जी बन जाएं। वो जो सदगृहस्थ था उसने जैसे ही ये बात सुनी तो आवाज दी भीतर जीवन साथी को कि बच्चों की मां को कि एक दीपक तो जला के लाओ। सो भीतर से बिना किसी आवाज के, बिना नू नच के, और दीपक जला हुआ। बाहर आकर के पास में रख करके वो जीवन साथी उनकी भीतर चली गई। ये भी नहीं कहा कि 12 बजे हैं दिन के, दीपक को का करने हैं, का जरूरत है, बर्बादी पे काय को टिके हो। हाँ कछु नहीं कही कि काय बर्बाद काय दिमाग है कि कछु फिर गया है का, जी कछु बातें नहीं कही। चुपचाप जो है अत्यंत प्रसन्नता से वो ल्या करके वो रख दी। बाबा जी ने युवक की तरफ देखा और कहा कि चले। युवक के समझ में नहीं आया कि कैसे व्यक्ति से मिलवाने लाए इतने दिन के उजाले में, और कह रहा कि दीपक लाके रख दो, और वो भी जिन जो इनकी जीवन साथी वे भी बुद्ध हुई हैं, उनने भी लियान के धर दिए। ऐसा विचार करना, वो अपन भी करते हैं ऐसा विचार, और वहां से लौट गए। अब ये बात तो उसके मन में रही कि इससे क्या मैसेज क्या मिला, इससे संदेह क्या मिला। अब दूसरे दिन कहा कि चलो अपन गांव के बाहर एक पहाड़ी है उस पर चलते हैं। तो पहाड़ी पर पहुंचे और वहां आवाज दी तो वहां पर एक और बाबा जी थे, वृद्ध थे। वे बाहर निकल के झोपड़ी में से आए, इनने प्रणाम वगैरह किया और कहा कि बाबा जी हम आए थे इस युवक को जो है आपसे मिलवाने के लिए, ये थोड़ा मुश्किल में है कि साधु बने या कि गृहस्थ बन जाए। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, अत्यंत प्रसन्नता से मिले और ये दोनों जन नीचे उतरने लगे। तो उस पहाड़ी के नीचे उतरते उतरते फिर से बाबा जी ने, वो जो पहाड़ी पर बाबा जी थे उनको आवाज दी, कह रहे सुनिए। तो वो फिर जो है फौरन झोपड़ी में से बाहर आए और अब की बार तो पहाड़ी के नीचे उतर करके अत्यंत प्रसन्न, और पूछा कि मैं तो आपसे पूछना भूल ही गया कि आप कैसे हैं, स्वस्थ प्रसन्न हैं कि नहीं। तो बाबा जी ने कहा नहीं मैं स्वस्थ हूं प्रसन्न हूं, बस इतना ही। हाँ, और लौट के पहाड़ी पर ऊपर पहुंचे पहुंचे थे फिर से यहां से आवाज दी उन बाबा जी, अरे बाबा जी सुनिए। तो बाबा जी फौरन फिर से उतने ही प्रसन्नता से नीचे उतर के आए। कहा क्या पूछते हो? कहते यही पूछता हूं कि कितनी उम्र हो गई आपकी? तो कहा 94 वर्ष की है। वापिस फिर चले ऊपर पहुंचते पहुंचते फिर आवाज दी कि अरे मैं तो भूल ही गया आपसे एक बात और पूछनी थी। तो बाबा जी फिर उतनी ही प्रसन्नता से बिना थके हुए और चुपचाप फिर वापिस आए। क्या पूछते हो? यही कि आपने ये संन्यास कब से धारण किया? कहते भाई मैं तो 10-12 वर्ष की उम्र से ही और सन्यासी बन के तब से यहां पर टेकरी पर अपनी झोपड़ी में जीवन व्यतीत करता। अब नव युवक मुश्किल में है। बाबा जी ने कहा कि देख लिया दोनों ही मार्ग तुम्हारे सामने हैं, एक गृहस्थ है एक साधु है, बनना हो जो बनना चाहो, लेकिन ध्यान रखना कि श्रावक या सदगृहस्थ बनना तो उसके जैसा कि गृहस्थी में अत्यंत संतोष पूर्वक बिना किसी आपस के तकरार के और सहज भाव से जीवन जीते हैं, और दूसरा अगर साधु बनना हो तो ये है साधु का उदाहरण कि कितनी भी कैसी भी कोई मुश्किल आवे लेकिन अपनी प्रसन्नता अपना समता भाव नहीं छोड़ते हैं। जिनमें से जो भी मार्ग चुनना हो वो चुन सकते हैं अपनी योग्यता के अनुरूप। मेरे तो कहने का भाव सिर्फ यही है कि अगर हम एक सदगृहस्थ हैं तो हमें संतोषपूर्वक जीवन जीना चाहिए, और संतोषपूर्वक जीवन जीने वाले के जीवन में ये पांचों बातें आएंगी। वो ही पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा कर सकता, वही अतिथि सत्कार और वही भगवान की पूजा, वही बंदी बांधवों की मदद। असंतुष्ट व्यक्ति ने अपना आत्मकल्याण कर सकता, ने परोपकार कर सकता। उसको तो सिर्फ हाव हाव है अपने अपने सुख सुविधा के साधन जुटाने की, वो किसकी क्या करेगा मदद, क्या आत्मकल्याण करेगा। इसलिए संतोषपूर्वक अगर अपन जीवन जीने की पद्धति अपनाते हैं तो बहुत आसानी से ये सारी चीजें जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाली हैं हमारे जीवन में आ सकती हैं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, अर्घ निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर तरु तलवर सा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फूल झड़ियां, अवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, तुम सादानी कोई हो जग को दे दी जग की निधियां, रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम।
विचार निरंतर ये भावना मेरे भीतर बनी रहे, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम क्या उपाय करें, हंस से हम सीख लें। हंस के साथ पास तीनों क्षमताएं हैं, चाहे तो वो आकाश में उड़ने का आनंद ले सकता है, पानी में तैरने का आनंद ले सकता है, जमीन पर हंस की चाल तो सबसे प्रशस्त मानी गई, वह जमीन पर भी ठीक चलना जानता है, अत्यंत प्रशस्त रूप से चलता है, तो वो तीनों चीजों में माहिर है। हमारे पास भी तीनों चीजें हैं, शरीर है, मन है, और हमारी अपनी चेतना है। चेतना तो आकाश की तरह है, अगर हम अपनी उस चेतना को विकसित कर लेवे तो आकाश में उड़ने का जो आनंद मिलता है हंस को, वही आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। शरीर हमारा पृथ्वी के समान है, अभी हम पृथ्वी पर भी ठीक से चलना नहीं सीखे, अर्थात हम शरीर में रह करके भी शरीर से मुक्त होने की विद्या नहीं सीखे, तो फिर हमें हंस से ये विद्या भी सीखनी चाहिए कि जमीन पर भी चलते हैं तो ऐसे कि लोग देख करके चकित रह जाएं इस देह में रहकर कि ऐसे जीते हैं कि लोग चकित हो जाएं देख करके कि भाई ऐसा तो कोई विरला ही हमने देखा कि देह में रहकर भी मानव देह से पार होकर के जीता है। और पानी क्या है, मन है, उतना ही तरल है। तो जैसे हंस पानी में भी ठीक से तैरना जानता है, ऐसे ही मन में भी हमारे उठने वाले शुभ अशुभ विचारों में हम डूबे ना तैरते रहें। चाहे तो हम एक हंस से भी ये तीनों विद्याएं अपने जीवन के लिए सीख सकते हैं। शरीर में ऐसे रहें कि शरीर से अनाशक्त, मन में ऐसे रहें कि उठने वाले शुभ अशुभ विचारों में डूबे नहीं, और चेतना चेतना इतनी समृद्ध हो कि वो मन और शरीर इनकी ग्रिप में न रहे, उनसे ऊपर ही रहे। क्या आने वाले समयों में हम ऐसा कोई प्रयत्न करेंगे कि शरीर से, शरीर में रहते हुए भी हम अनाशक्त होकर के रह सकें, सुख दुख के बीच भी हम समता रख सकें, और हमारी चेतना के विकास के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें, उसके आनंद को ही सबसे अच्छा आनंद माने। हम तो शरीर और मन के आनंद में ही खोए रहते हैं, कभी शरीर और मन से ऊपर भी कोई आनंद हो सकता है चेतना का, उसको भी प्राप्त करने के लिए कभी थोड़ा समय निकालें। ये जो अक्षर ज्ञान है वह इसमें माध्यम बन सकता है। जो हमें आचार्य भगवंतों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन दिए हैं, जिन वाणी गुरुजनों के उपदेश, वे सब हमारे लिए साधन है। हम चाहें तो उनके माध्यम से ऐसा ज्ञान जो कि हमारे जीवन को ऊंचा उठा सके वो प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तव में ज्ञान वही सार्थक है जो हमारे जीवन को ऊंचाई देता है, हमारी चेतना को परिष्कृत करता है, हमें शरीर और मन की ग्रिप से निकाल देता है। ज्ञान तो वही है। एक पंडित जी हुए साड़ू मल में, कर्म सिद्धांत के मर्मज्ञ थे। शाम को 10-25 लोग उनकी सभा में कर्म सिद्धांत के बारे में ज्ञान हासिल करते थे। एक दिन एक व्यक्ति को समाज के बीच में पकड़ करके लाया गया कि इसने चोरी की है। समाज का ही व्यक्ति है इसलिए समाज ही उसे दंडित करेगी, ये पहले सामाजिक नियम था। अन्यत्र कहीं उसे किसी और के सामने दंडित नहीं किया जाए, समाज ही उसे अपने बीच दंडित करके और उस दोष से मुक्त कर दे। एक स्वस्थ, बहुत स्वस्थ प्रक्रिया ये रही। अब तो बदल गया है, अब समाज की किसी पर कोई ग्रिप नहीं रही, ना कोई सामाजिक हमारे नियम, क्योंकि जो नियम बनाएगा उसको तो स्वयं पालन करने पड़ेगा, तो कोई नियम नहीं बनाता क्योंकि खुद पालन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो नियम कैसे बनाए। और सारी घटना सामने आई और उस व्यक्ति ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की। मालूम क्या किया था उसने, उसने अपने घर से 10-15 घर आगे किसी के यहां पर गाय भैंसों को खिलाने के लिए भूसे का बोरा रखा था, वो चुराया था, और वो भी ऐसे ही खींचते हुए ले आया था। सो भूसे के बोरा में नीचे छेद था, तो वहां से उसमें से भूसा गिरता रहा, सो उसके घर तक भूसे की लाइन भी बन गई। सो दूसरे दिन पकड़ा भी गया। होशियारी से करना चाहिए थी चोरी, क्या मन में तो यही आ रहा होगा कि बुद्धू रहा होगा, अच्छे से नहीं की उसने। नहीं, ऐसा विचार अब नहीं आना चाहिए। अब तो यह आना चाहिए कि मैं ऐसी होशियारी नहीं सीखूं, ऐसी होशियारी करके बहुत अपना अहित कर लिया। होशियारी तो वो है कि जिसमें मैं इस तरह के कामों से मुक्त हो सकूं। अभी तो इस तरह के कामों में लिप्त रह करके अपने को होशियार मानते हैं, अपने को समझदार बुद्धिमान मानते हैं ऐसे कामों में लिप्त रह करके भी। अब मन में ये भावना आनी चाहिए कि ऐसे कामों से मुक्त होने में मैं अपनी चतुराई मानूं, अपनी समझ उस समय मानूंगा कि हाँ श्रेष्ठ है मेरी मेरा ज्ञान। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई 2.5-3 रुपए का पूरा भरा हुआ बोरा बिकता है, और भी सामान था, कोई कीमती चीज चुराई होती। लोगों के मन में ये विचार आया तो उससे पूछा कि तुमने यही क्यों चुराया, और भी सामान था उनके यहां पर, कोई कीमती सामान चुरा लेते। तो उसने मालूम क्या जवाब दिया, भैया रोज पंडित जी की सभा में कर्म सिद्धांत के बारे में मैं सुनता हूं, मैंने अपने 2 जून के भोजन में से 1 जून का भोजन रखा कुछ दिन तक, फिर हम दोनों को वह 1 जून का भोजन भी मिलना बंद हो गया, हम पानी पर रह गए। आज तो जब बेटे ने दूध के लिए जिद की और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो दूध के लिए मुझे इंतजाम करना था, तब मेरे मन में यही विचार आया कि अब और कोई उपाय नहीं है, जब कमाऊंगा 4 पैसे तो उसका ज्यों का त्यों बोरा चुकता कर दूंगा, पर अभी तो उठा के ले आऊं, सो उठा के ले आया। 3.5 रुपए चाहिए थे इसलिए 3.5 का ही सामान चुराया, मुझे अधिक तो चाहिए नहीं थे। पंडित जी ने कहा कि जितनी तीव्र कषाय के साथ में कोई कार्य करोगे उतना गाढ़ा कर्म बंधेगा, मुझे कर्म बंध से भय है, मैं ऐसे तीव्र कर्म नहीं बांधना चाहता। कर्म सिद्धांत पढ़ा हुआ जीवन में आ भी गया उसके, और हम कितना ज्यादा जानते हैं। अभी कई अभ्यास करने वाले होंगे जो 8 कर्मों का, किस कर्म का कहां तक उदय है, कहां तक बंद है, कितनी सत्ता कहां तक है, ये सब राय रत्ती जानते होंगे, लेकिन फिर भी राग द्वेष में कमी नहीं आती है। तो वो ज्ञान हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएगा भैया, मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है, हम निरंतर एक ऐसा ज्ञान हासिल करें जो हमें हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बने, हमारी आत्म संपदा हमें दिला सके, और हमें स्वप्न से जागृत कर सके, सत्य का परिचय करा सके। स्वप्न और जागृति दोनों ही हमारे जीवन में हैं। कैसे, रात में सो जाते हैं उसको हम स्वप्न मानते हैं, सुबह जाग जाते हैं उसे हम जागृति मानते हैं। नहीं, ये तो सभी जीव के साथ है। वास्तव में स्वप्न क्या है, ये संसार और इस संसार में मेरा राग द्वेष, यह स्वप्नवत ही है। जागृति तो तब है जब मेरे भीतर वीतराग भाव जागृत हो, वो जागृति है, वरना तो यहां चाहे आंख खुली हो और चाहे आंख मूंदी हो, सब कुछ स्वप्नवत ही है। यानी जिसे प्राप्त करने की इच्छा तो होती है पर जो प्राप्त नहीं होता वही तो स्वप्न है। मैं कितनी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूं, कहां प्राप्त होती है, कुछ चीजों का संयोग होता है, लेकिन संयोग होते होते और वियोग की पीड़ा सहन करना पड़ती है, तो ये स्वप्न ही तो है। जैसे सपने में मूर्ख राग पद पायो उठ मूर्ख रुदन मचायो, वही स्थिति हमारी होती है, कुछ प्राप्त होता है और फिर वह भी स्वप्नवत, जैसे नींद खुलने पर जो जो रात में देखा था वो सब सुबह हाथ कुछ नहीं आता, सारी रात जमीन पर लेटे लेटे और हम स्वप्न देखते रहे कि किसी महल में राजसी ठाट बाट के साथ गद्दी पर सोए हुए हैं, और सवेरे अगर नींद खुल जावे तो कहां राजपाट है और कहां गद्दी है, वही ताट है और वही जमीन है। क्या मिला, स्वप्न से प्राप्त नहीं होता, स्वप्न से प्राप्ति का भ्रम और आश्वासन अवश्य होता है। ऐसे स्वप्न को मैं तोड़ सकूं, ऐसा ज्ञान मैं हासिल कर लूं, मैं जागृत हो जाऊं एक बार इस तरह से कि ये सारी चीजें स्वप्नवत मालूम पड़ने लगें, ताकि मुझे फिर ये आशक्त न करे। स्वप्न टूट जाने पर जैसे हंसी आती है, ऐसे ही इन संसार के संयोग वियोग को देख करके मैं और प्रसन्न ही बना रहूं, संयोग में ज्यादा हर्ष ना करूं, वियोग में विषाद ना करूं। क्या ऐसी कोई समझ हमारे भीतर, ऐसा कोई ज्ञान हमारे भीतर हासिल नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं। एक राजा अपने एक ही पुत्र की बीमारी से अत्यंत दुखी है, उसके सिरहाने बैठा है, सेवा कर रहा है। राजवैद्य तो सेवा कर ही रहे हैं, राजा स्वयं, रानी साहबा स्वयं उसके सिरहाने बैठी हैं सेवा में। एक दिन दो दिन निकल गए हैं, बेहोशी टूट ही नहीं रही है। एक बार आंख खोल के देख तो लेता राजकुमार तो पिता को शांति हो जाती, लेकिन बेहोशी नहीं टूट रही, राजा को नींद ही नहीं आती है। तीसरे दिन अचानक राजकुमार की आंख खुलती है और वो पानी मांगता है। सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है कि राजकुमार ने आंख खोली है, पानी मांगा है, अब तो स्वस्थ हो जाएगा। रानी साहबा भी राजा को कहती हैं कि तीन दिन से तुम्हारी आंख भी नहीं लगी, अब तो राजकुमार ठीक है, थोड़ा विश्राम कर लो, यहीं बैठे बैठे ही सही, मैं हूं अभी, मैं देख रही हूं, मैं संभाल लूंगे। राजा थोड़ा सा निश्चिंत होकर के और टिक करके जैसे ही नींद लेता है, उसे एक स्वप्न दिखना शुरू होता है। स्वप्न में वो जितना बड़ा राजा अभी है उससे भी बड़ा राजा होता है, और स्वप्न में उसके एक पुत्र नहीं 12 पुत्र हैं, अपार वैभव है। वो उसी सबके बीच में आनंदित है, और इतने में ही उसे किसी की चीख सुनाई पड़ती है तो नींद खुल जाती है। रानी साहबा चीख करके उससे जगाती हैं कि उठो, क्षण भर पहले जिसने आंख खोल के पानी मांगा था अब जीवन भर आंख नहीं खोलेगा ऐसा लग रहा है। और राजा साहब ने आंख खोल करके राजकुमार की मृत देह को देख करके जोर से ठहाका लगाया तो सब शक्ति में आ गए कि लगता है इस दुख को न झेल पाने की वजह से राजा पागल हो गए। तो सबने हिलाया, समझाया कि क्या करते हो आप, हंस रहे हो, रोने का अवसर है। उसने कहा कि नहीं, अब समझ में आया कि वास्तविकता क्या है। वो जो स्वप्न में 12 पुत्र थे, अपार वैभव था, जो तुम्हारे चीखने से नींद खुलने पर टूट गया उसके लिए रो, या कि एक जो ये सामने है जिसका कि मरण हो गया उसके लिए रो, अब किसी के लिए ना रोऊंगा, अब मैं अपनी प्रसन्नता को निरंतर बनाए रखूंगा। अब मुझे ये समझ पैदा हो गई है कि या तो खुली आंख हो चाहे बंद आंख हो, सारी चीज स्वप्नवत ही है, मिलती मिलती मालूम पड़ती है, लेकिन अगले क्षण ही वियोग को प्राप्त हो जाती। ये वास्तविकता का बोध हम चाहें तो कर सकते हैं। रोज रोज ऐसा अभ्यास करने पर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। किसी विरले को होता होगा या कोई ऊपर से ऐसे ही टपकता होगा जिसको होता होगा, नहीं, हम और आप सबके भीतर ऐसी सामर्थ्य है। बस इतना है कि पुरुषार्थ जिस दिन हम अपना जागृत कर ले उस दिन हम आसानी से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी उस आत्म संपदा को हम सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि जो भी हम ज्ञान हासिल करें वो श्रद्धा पूर्वक करें और अपने आचरण को परिवर्तित करने की दृष्टि से करें। बस चार बातें जाने, 40 ना भी जाने, लेकिन चार बातें भी वो जाने जिससे कि मेरा कल्याण हो सके, प्राणी मात्र का कल्याण हो सके। वो जानकारी ही श्रेष्ठ है, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही जानकारी, वही समझ हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। क्योंकि श्रद्धा ज्ञान के साथ आने वाले अहंकार को तोड़ देती है। अगर अकेला ज्ञान होगा तो अहंकार के बिना नहीं रह सकता, और अगर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान हासिल किया जाएगा तो अहंकार आएगा नहीं। और साथ में अगर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान हासिल किया होगा तो जीवन को परिवर्तित किए बिना नहीं रहा होगा, रहेगा, ये कसौटी है इस बात की। हम लोग अपने उस ज्ञान को इस कसौटी पर कस करके देखें, कितना तो हम ज्ञान हासिल करते हैं, कितना तो पढ़ते लिखते हैं, कितना तो कितनी बातें सुनते हैं जानते हैं, लेकिन कसौटी पर कस के देखें कि अगर मैंने श्रद्धा के साथ इन चीजों को हासिल किया है तो ये मेरे जीवन को परिवर्तित जरूर करेंगे। महाराज कह रहे थे कि कोई हमारी बात नहीं मानता, पर मैंने पिछले दिनों में ये देखा है कि जिनने बात मानी है उन्होंने अपने जीवन को बदलने पर ही बात मानी है। बात तो सब मानते हैं लेकिन जीवन बदल करके बात को मानना युधिष्ठिर की तरह, उसमें तो कुछ ही लोग पास हो पाते हैं, पर हुए हैं लोग पास। मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं, मैं इस आशा और विश्वास से भर करके जाऊंगा आचार्य महाराज की आज्ञा के अनुरूप, उनके आदेश के अनुसार जाऊंगा, लेकिन इस आशा और विश्वास से भर के जाऊंगा जब भी जाऊंगा कि लोग मेरी कही हुई बात को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो इस जीवन के अंत क्षणों में भी अगर याद आ जाएगी तो अपने जीवन को परिवर्तित करने में देर नहीं करेंगे। हमारे अपने जीवन में ये सब बातें हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए हैं। हमारे अपने संस्कारों की प्रबलता इतनी ज्यादा है कि हम उन्हें सहसा तोड़ नहीं पाते, पर तोड़ने की भावना अगर आ जाए उन खोटे संस्कारों को तो कोई नहीं रोक सकता। फिर ये समझ ये ज्ञान हमारे उन खोटे संस्कारों को तोड़कर हमारे भीतर श्रेष्ठ संस्कार लाने में कारण बनेंगे, हमारे और दूसरे के कल्याण में हमारा ज्ञान कारण बनने लगेगा। एक छोटी सी घटना कहूं और हमारे जीवन में आज हमने दो बातें सीख ली कि अब जो भी समझ हम पैदा करेंगे अपने भीतर वो समझ हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली होगी, और इतना ही नहीं हमें हमारी अपनी आत्म संपदा से परिचित कराने वाली होगी। धर्म और धर्मात्मा के प्रति रुचि होना ये हमारे भीतर जागृत होगा और इन दोनों भावनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को आसानी से ऊंचा उठाएंगे। एक राजा बीमार पड़ गया, अस्वस्थता के चलते किसी ने सलाह दी कि आपको तो किसी बालक का मांस खाने पर ही इस रोग से मुक्ति मिल सकेगी। राजा थोड़ी देर तो मुश्किल में पड़ा, लेकिन अगर हमारे पास समीचीन ज्ञान नहीं है तो हमारे अंदर भावना कि हमारा जीवन बचना चाहिए, दूसरे का चाहे नष्ट भी हो जाए, और राजा के भीतर भी ऐसी ही भावना आ गई, मंत्रियों से कहा कि उपाय करो। इतना ही पर्याप्त, मंत्रियों ने सारे शहर में मुनादी करा दी कि जो भी अपने बालक को बेचना चाहे राजा उसे मोह मांगी कीमत पर खरीदने तैयार है। और एक व्यक्ति तैयार हो गया कि मेरे पुत्र के वजन की और पुत्र के ही ऊंचाई की सोने की प्रतिमा अगर कोई उसे दे तो वो अपने पुत्र को दे सकता है। ये घटनाएं कितनी सच्ची हैं या नहीं है इससे अपन को मतलब नहीं है। ऐसा ही हमारे अपने जीवन में कभी घटित हो तो हम सावधान हो जाएं, सिर्फ इसके लिए है। और उतना स्वर्ण उसे दे करके उस बालक को राजा ने प्राप्त कर लिया। पुरोहित और न्यायाधीशों से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, इस बालक के को नष्ट करके इसका मांस राजा को देने में कोई हानि तो नहीं है, आपका न्याय क्या कहता है? तो जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी कहा कि राजा का जीवन अधिक कीमती है क्योंकि वह प्रजा का पालन करता है, इसलिए अगर प्रजा का एक व्यक्ति अपने प्राण देकर के भी राजा को बचाए तो इसमें कोई भी अनुचित नहीं है। ये भी हो गया और राजा ने भी ऐसा सुन करके आदेश दे दिया, तलवार उठ गई उस बालक के ऊपर और तलवार गिरे इससे पहले बालक बहुत जोर से ठहाका लगा करके हंसा, तो तलवार गिराने वाले का हाथ भी रुक गया और राजा भी शक्ति में आ गया। मरण से पहले कोई इस तरह ठहाका लगा करके हंसे, कोई ना कोई कारण है। राजा ने कहा कि ठहरो, इससे पहले कि इसे मारा जाए मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं इससे पूछना चाहूंगा कि ये क्यों हंसा। पूछा उससे तो उसने कहा कि जो माता पिता अपने प्राण देकर के भी अपने बालक की रक्षा करते हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ थोड़े से पैसों में बेच दिया, ये देख करके मुझे हंसी आई, थोड़ी हंसी आई, फिर मेरी हंसी और बढ़ गई जब न्यायमूर्ति कहलाने वाले न्यायाधीश ने ऐसा निर्णय दे दिया कि प्रजा पालक की सुरक्षा के लिए अगर प्रजा के किसी भी व्यक्ति को नष्ट भी कर दिया जाए तो अनुचित नहीं है, तब मेरी हंसी और बढ़ गई और फिर मैंने ये देखा कि प्रजा पालक स्वयं अपनी प्रजा पर शस्त्र उठाने के लिए आदेश दे दे, तब तो मेरी हंसी ठहाके में बदल गई और कोई कारण नहीं है राजन, आप आदेश दें, रुक क्यों गई आपकी तलवार, अब तो मैं चौथी बात देखने तैयार खड़ा हूं कि देखें कि माता पिता, देखें कि न्यायाधीश और देखें कि राजा, इन सब की लीला और संसार की लीला तो देख ली मैंने, अब मैं सिर्फ भगवान की लीला देखना चाहता हूं कि ये तलवार मेरे प्राणांत कर सकती है, सिर्फ देह को मारेगी या कि मुझे मारेगी, मैं ये देखना चाहता हूं। ये है ज्ञान जो कि अपने और दूसरे दोनों की रक्षा करने के लिए तत्पर है।